समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के 4:30 और 18 सेकंड का समय और समाचार पत्रिका कार्यक्रम परिक्रमा के आज के संस्करण में आपके स्वागत के साथ हम उपस्थित हैं। आज के इस सफर में आपके साथ हूं मैं, आप ही का अपना रवि कपूर, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। तो श्रोताओं को भी नमस्कार और अभिषेक आपको भी नमस्कार।
हेलो रवि, हेलो टू ऑल आवर लिसनर्स।
आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे देश दुनिया के समाचार, चलेंगे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए और जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा या जिनका है आज ही के दिन जन्मदिन।
यस, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट रवि कपूर, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first.
जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर।
President द्रौपदी मुर्मू टू कन्फर्म पद्म अवार्ड्स एट राष्ट्रपति भवन दिस इवनिंग।
रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया।
Air India Express terminates services of 25 senior crew members following cancellation of dozens of flights.
CBI ने रिश्वत खोरी के मामले में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 2 डॉक्टरों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया।
एंड इन IPL क्रिकेट, पंजाब किंग्स टू टेक ऑन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन धर्मशाला दिस इवनिंग। And now, Ravi, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about social media and general election.
जी बिल्कुल।
Yes, well, social media has made Indian politics inclusive by allowing citizens who were traditionally excluded from politics due to geography and demography to gain direct entry into the political process. It has also allowed for a diversity of viewpoints and public engagement on an unprecedented scale. However, ethics in political communication, which has always been a complex issue, is further complicated by the rise of digital technologies that are weakening traditional ethical constraints among all political actors, politicians, journalists and the mass media and audiences.
और यही नहीं अभिषेक, नाम पुकार, फर्जी समाचार और अन्य प्रकार के निम्न स्तरीय प्रवचन और अनैतिक राजनीतिक संचार हमेशा मौजूद रहे हैं। सोशल मीडिया ने निसंदेह इन समस्याओं को दूसरे स्तर पर बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया युग में इस तरह के राजनीतिक प्रवचन की नियमितता, जहां इस प्रकार के संदेशों को महत्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता के निम्न से शून्य स्तर वाली आबादी के बीच बढ़ाया, साझा और दोहराया जाता है, निश्चित रूप से अपने आप में समस्याग्रस्त है। ये परेशान करने वाली प्रवृत्तियां समकालीन राजनीतिक संचार की नैतिकता के बारे में नए सवाल उठाती हैं।
Yes, and considering such issues, the Election Commission has issued directions to political parties for responsible and ethical use of social media in election campaigning to ensure level playing field among all stakeholders. The Commission also warned the parties against the misuse of AI-based tools to create deep fakes that distort information or propagate misinformation, emphasizing the need to uphold the integrity of the electoral process.
आयोग मौजूदा कानूनी प्रावधानों को राजनीतिक दलों के ध्यान में लाया है जो गलत सूचना के उपयोग और डीप फेक का उपयोग करके प्रतिरूपण के खिलाफ नियामक ढांचे को नियंत्रित करते हैं। मौजूदा कानूनी प्रावधानों को देखते हुए अन्य निर्देशों के अलावा पार्टियों को विशेष रूप से फर्जी ऑडियो और वीडियो प्रकाशित करने, प्रसारित करने या झूठी या भ्रामक प्रकृति की जानकारी प्रसारित करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया है। राजनीतिक दलों को ऐसे किसी भी सामग्री को उनके संज्ञान में लाने के 3 घंटे के भीतर तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया गया है।
Yes, and so to conclude, the advent of social media has changed how politics has been organized and conducted, as well as the nature of political communication in India. On the one hand, social media has allowed for the democratization of politics and re-energized the political landscape. On the other, several ethical dilemmas arise with the involvement of political actors in the non-ethical uses of social media, compounded by the proliferation of social media among a largely digitally illiterate population. And moving on, the Indian Council of Medical Research, ICMR, has released an upgraded dietary guidelines for Indians to suit the modern eating habits of 2024. Framed by researchers from Hyderabad-based National Institute of Nutrition, NIN, the modern dietary guidelines specifically advise people to be physically active, exercise regularly, restrict intake of salt, minimize high fat, sugar, ultra-processed foods, and take steps to prevent abdominal obesity, overweight, and overall obesity. And our correspondent Arpita Chaudhary has talked to Dr. Hemalata, Director of ICMR, National Institute of Nutrition. Let's listen in.
My first question to you would be, if you could tell us about this particular report and sort of delineate on what are the 17 recommendations that have been made.
We have released this book for the last 2 years we have worked on. This is Dietary Guidelines for Indians. So we are recommending specific foods and the quantities of foods that one can take across different life stages, like right from birth and 6 months old and young children, adolescents, pregnancy, lactation, men, women, and also old age. So across age groups, one should be consuming what foods and in what quantities we have given. And for young children, we have also recommended some specific recipes, like as complementary foods without adding much sugar and all, how one can prepare at home itself. And of the 17 guidelines, we have also come up with some specific recommendations on fat intake, protein intakes, and then how to read labels on packaged foods. And we have also given some recommendations on categorization of foods based on processing level and based on HFSS level, that is high fat, sugar, salt level, and so that to guide people to choose healthy foods.
The report also mentions that we just talked about the harmful effects of ultra-processed foods. So if you could also let us know about that.
That is well known, and the ultra-processed food is highly processed and they are depleted in nutrients, because whenever a food is processed, generally it is leached out of nutrients. And also the worst part is even fiber is removed from when ultra-processing is done. So foods are healthy when they have their own native fiber. When that fiber is depleted, definitely it is not suitable for good health. So regular consumption of ultra-processed food in high quantities is certainly not helpful.
Owing to pollution and also the changing lifestyle of youngsters especially, has there been any special recommendations that have been made?
For young people, our recommendation would be eat healthy, be mindful of what you are eating, then also do regular physical activity. And when you take healthy food, even your pollution, the adverse effects of pollution around you is going to be much lesser. If you consume unhealthy food, even the pollution around you will have more adverse effects. This is also well known. When you take healthy food, it protects you from harmful effects of other things around you.
One last question. As this new report has been released, just for our listeners, if you could just tell us in brief what is different in this as compared to the previous dietary allowance.
Yeah, in the previous guideline, there are several recommendations. There was no specific recommendation for protein, but this time we got out the specific recommendation on protein. Another thing is, in the previous one, there was no categorization of food based on processing level and based on HFSS components. Now we have tried to do that. And another thing is, we have made some of the specific recommendations on sugar, like sugar should be avoided, restricted for very young children and infants. Lastly, we have also come up with specific ratios for cereals and pulses. I mean, if you take 3 parts cereals, 1 part pulses, very good for health. Not just very high quantity of rice and very little dal, beans and all. So when you take 3 parts rice, take substantial part, that is 1 part dal, beans and all. Earlier it was 10:1 ratio, now it is 3:1 ratio.
और अभिषेक, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो आकाशवाणी पुणे केंद्र में स्थित क्षेत्रीय समाचार एकांश ने 1 मई से स्वर्ण महोत्सवी वर्ष में कदम रखा है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का एक अमिट हिस्सा बने इस एकांश का स्वर्णिम अवसर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1 मई 1975 के दिन पुणे समाचार एकांश का पहला मराठी क्षेत्रीय बुलेटिन प्रसारित हुआ और उसी के साथ शुरू हुई समाचारों को मराठी जनमानस के साथ घुल मिलाने की परंपरा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई जनमान्य हस्तियों के योगदान के साथ निरंतर जारी है। प्रसारण के आधुनिक तकनीक के साथ अपने आप को रूबरू रखते हुए पुणे के क्षेत्रीय समाचार घर घर में सुबह की पहली पसंद बने हुए हैं। आज भी ऐसे कई श्रोतागण एकांश के साथ जुड़े हुए हैं, जो पिछले 40 सालों से निरंतर केवल यही समाचार सुनते आ रहे हैं। इस परंपरा की नींव रखने वालों में शामिल थे इस बुलेटिन के पहले संपादक चंद्रशेखर कारखानीस। उन्होंने बातचीत में ताजा की एकांश के आरंभ की अनसुनी बातें।
मेरी जिंदगी में एक में को बहुत अलग मायने रखता है। वो बहुत चैलेंजिंग समय था। आईआईएमसी के बाद हमने अपॉइंटमेंट हुई थी फील्ड पब्लिसिटी में। एक दिन एक संदेश आ गया कि उस समय के निदेशक थे वृत्त विभाग के एससी भट्ट, कि वो बॉम्बे में मुझे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम पुणे से रीजनल न्यूज चालू करना चाहते हैं मराठी में। लेकिन मुझे आश्चर्य हो गया कि एक गुजराती आदमी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है मराठी बुलेटिन के लिए। तो बाद में मुझे पता चला कि भट्ट साहब बम्बई में बहुत साल रह चुके थे और उनको पता चल गया था कि जो कि बम्बई पॉलिटिकल राजधानी है महाराष्ट्र की, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी पुणे है और पुणे साहित्य संगीत कला इसके लिए बहुत मशहूर है। तो उन्होंने हमें बताया कि देखो पुणे में काम करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो भट्ट साहब ने दिल्ली से मराठी न्यूज रूम में जो बुजुर्ग थे उस समय सदाशिव दीक्षित और मिसेस सुधा नरोने, उन दोनों को यहाँ न्यूज पढ़ने के लिए पुणे भेज दिया था क्योंकि वो अनुभवी थे। तो हमने थोड़ी तैयारी की 10-15 दिन और 1 मई के दिन हमने पहला बुलेटिन सादर किया। उस समय महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर थे बुजुर्ग कांग्रेस नेता शंकरराव चौहान, तो उनका रिकॉर्डेड संदेश आया था वो पहले हमने बजाया और फिर बुलेटिन हो गया और पहले दिन का बुलेटिन सदाशिव दीक्षित ने पढ़ा था।
पुणे जैसे ऐतिहासिक एवं विद्या की नगरी कहे जाने वाले शहर में स्थित ये समाचार एकांश कोरोना जैसे महासंकट के समय अड़िग रहकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। इसका श्रेय एकांश के आरंभ से लेकर अब तक पूर्ण निष्ठा के साथ यहाँ काम करने वाले सभी समाचार कर्मियों को जाता है। अब अगले 50 वर्षों की नींव डालने का गोवर्धन पर्वत भी उन्हें उठाना है। इस काम में उन्हें यकीनन बल मिलेगा समर्पित श्रोताओं का। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
इन व्यू ऑफ द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस, वी प्रेजेंट यू अ कैप्सूल बेस्ड ऑन स्टेट प्रोफाइल, गिविंग डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, डेट ऑफ पोलिंग, नंबर ऑफ सीट्स एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स बाय आवर कॉरेस्पोंडेंट्स।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। इसमें समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इटावा की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। बीजेपी इस सीट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से जीतती आ रही है और इस बार पार्टी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा से जितेंद्र दोहरे और बसपा से हाथरस की पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल मैदान में है। एक रिपोर्ट।
इटावा लोकसभा क्षेत्र में 3 जनपदों इटावा, औरैया और कानपुर देहात का समन्वय है। इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं इटावा, औरैया, भरथना, दिबियापुर और सिकंदरा आती हैं। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 18,27,781 मतदाता हैं। इनमें 9,83,960 पुरुष मतदाता और 8,43,780 महिला मतदाता शामिल हैं। इटावा को राजनीतिक पहचान और सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से मिली। सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार होने की वजह से समाजवादी पार्टी का दबदबा इटावा लोकसभा सीट पर रहा है। सपा इस सीट पर लगातार 3 बार जीतने वाली इकलौती पार्टी है। भाजपा रामशंकर कठेरिया को एक बार फिर प्रत्याशी बनाकर इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा ने अपनी सीट वापस हासिल करने के लिए जितेंद्र दोहरे को मैदान में उतारा है। उधर बसपा प्रत्याशी हाथरस की पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल मुकाबले को रोचक बना रही है।
एंड नाउ फ्रॉम उत्तर प्रदेश वी आर नाउ मूविंग टू राजा महेंद्रवरम पार्लियामेंट्री सीट इन आंध्र प्रदेश। Raja Mahendravaram was previously known as Raja Mahendri. The constituency consists of 7 assembly segments. Among the 16 lakh voters in the constituency, the female voters outnumber male by 40,000. This is one of the few constituencies in the states where the BJP secured victory twice. In 2019 general elections, Margani Sri Bharat from YSR Congress Party won the seat with a majority of 1,20,000 votes over Maganti Rupa of the Telugu Desam Party. More on this from a correspondent.
Among the 12 contestants in the fray, the keen contest is between Daggubati Purandareswari of the NDA and Guduri Srinivas of the YSR Congress Party. Daggubati Purandareswari, who is also the BJP state president, is promising to develop Rajamahendravaram as a tourism hub. The charisma of her late father, the matinee idol and former Chief Minister N.T. Ramarao, may work in her favour. On the other hand, Guduri Srinivas, a well-known doctor in the region, is known for public services activities and is banking on the welfare schemes implemented by the YSR Congress Party. The Election Commission is organizing 1577 polling booths and is aiming to achieve a polling percentage higher than 81% mark achieved in 2019 general elections. Sai Sisla, Vijayawada.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में अब हम मध्य प्रदेश की खरगोन लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके के लोकसभा क्षेत्र खरगोन में चुनावी तापमान चढ़ा हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खरगोन लोकसभा सीट का गठन 1962 में हुआ था। खरगोन सीट पर अभी तक 16 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें से 6 बार कांग्रेस और 7 बार भाजपा को जीत मिली है। खरगोन संसदीय सीट 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है, जिनमें 5 सीटें कांग्रेस के पास है और 3 सीटें भाजपा के पास। खरगोन संसदीय क्षेत्र में करीब 20,39,000 मतदाता है, जिनमें से 10,20,000 पुरुष और 10,18,000 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या भी 28 है। इन चुनाव में खरगोन से कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के पूरलाल खड़ते के बीच है। संजीव शर्मा, भोपाल।
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember eminent freedom fighter Gopal Krishna Gokhale, who was born on the 9th of May, 1866. A moderate political leader and a social reformer, Gokhale was a senior leader of the Indian National Congress and the founder of the Servants of India Society.
Gokhale was famously a mentor to Mahatma Gandhi. Gandhiji recognized Gokhale as an admirable leader and master politician, describing him as pure as crystal, gentle as a lamb, brave as a lion, and chivalrous to a fault, and the most perfect man in the political field. Recalling his first meeting with Gokhale in Pune on October the 12th, 1896, Gandhiji wrote,
I met Gokhale. I found him on the Ferguson College grounds. Gopal Krishna Gokhale gave me an affectionate welcome and his manner immediately won my heart. With him, this was my first meeting and yet it seemed as though we were renewing an old friendship. Sir Firoz Shah had seemed to me like the Himalaya, the Lokmanya like the ocean, but Gokhale was as the Ganges. One could have a refreshing bath in the holy river. The Himalaya was unscalable, and one could not easily launch forth on the sea. But the Ganges invited one to its bosom. It was a joy to be on it with a boat and an oar. Gokhale closely examined me, as a schoolmaster would examine a candidate seeking admission to a school. He told me whom to approach and how to approach them. He asked to have a look at my speech. He assured me that he was always at my disposal and sent me away exultantly happy. In the sphere of politics, the place that Gokhale occupied in my heart during his lifetime and occupies even now was and is absolutely unique.
Gopal Krishna Gokhale died on the 19th of February 1915. We salute this great nationalist.
We also remember activist for Indians in South Africa, Bhavani Dayal Sanyasi, who died on the 9th of May, 1950. He was the editor of various India-related newsletters, such as The Pravasi, and collaborated with Mahatma Gandhi and represented the South African Indians at the Indian National Congress. He was also active in the Arya Samaj.
Bhavani Dayal came from a family that had moved from Ara district, Bihar, as indentured labourers to South Africa. His parents, Babu Jairam Singh and Mohini Devi, became free citizens in 1884 and settled in Johannesburg, where Dayal was born. Dayal joined Gandhiji in the passive resistance movement of 1913. In 1919, he represented the South African Indians at the Amritsar session of the Indian National Congress.
Dayal founded a journal called Hindi and protested a British plan in 1921 to repatriate Indians to British Guyana. Dayal founded a Pravasi Bhavan in his home village at Bahuara, Bihar, with a library and school in 1926-27. In 1930, he took part in the Salt Satyagraha in India, and on March 29th, he was booked for seditious speeches, including those delivered by him in Fiji. In 1932, he went back to South Africa.
Bhavani Dayal continued to work for the betterment of people till his death in 1950. We salute the great patriot.
We remember independence activists Narayan Murmu, Baju Murmu and Baidyanath Tudu, who were arrested on the 9th of May 1943 for taking part in the Quit India movement. The three were residents of village Dumaria, Santhal Parganas, Jharkhand, and also took part in the Lathi Pahad agitation. They died during their internment. We salute the great martyrs.
In business news today, benchmark equity indices plunged around 1.5%, with NSE Nifty 50 ended below 22,000 mark amid broad-based selling. Indian stocks edged lower before the Bank of England's rate decision and data on U.S. initial jobless claims. Recent hawkish rhetoric from certain U.S. Federal Reserve officials has also intensified pressure on Indian equities. The BSE Sensex tanked 1,062 points or 1.45% to end at 72,404 points. The broader Nifty 50 shed 345 points or 1.55% to 21,957.50. In the forex market, the rupee ended at 83 rupees and 51 paise against the US dollar today. At the multi-commodity exchange, gold futures for June contracts were trading around 71,035 rupees per 10 grams. Silver futures for July contracts were trading around 83,460 rupees per kilogram when reports last came in. And in intraday trade, Brent crude was trading at $84.15 per barrel.
और अभिषेक, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जान लेते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 9 ओवर और 4 गेंदों में बिना कोई विकेट खोए 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
And in star Indian table tennis player Manika Batra stormed into the quarterfinals of the Saudi Smash in Jeddah, beating world number 14 Nina Mittelham of Germany. Batra defeated Mittelham 11-6, 11-9, 11-7 in 22 minutes to seal a maiden last eight entry in the event. This is Batra's first win over Mittelham in 4 attempts. Now the Indian will face another formidable rival, world number 5 Hina Hayata of Japan, in the quarterfinal match.
और अभिषेक, अब समय हो गया है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। तो श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं हम तेंजिंग नोर्गे को, जिन्हें शेरपा तेंजिंग कहा जाता है। आपका जन्म मई 1914 में हुआ था तिब्बत में, लेकिन आपने इस दुनिया को अलविदा कहा 9 मई 1986 को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह पाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। तेंजिंग का जन्म मई 1914 में तिब्बत की खरता घाटी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नामग्याल वागिंजी था, लेकिन लामा प्रमुख ने उनका नाम बदलकर नगावांग तेंजिंग नोर्गे कर दिया था, जिसका अर्थ है धनी, भाग्यशाली, धर्म को मानने वाला। उनके पिता घांग ला मिंगमा याक पालने वाले थे। उनकी मां का नाम जोक्यो किंजम था। उनकी मां उनके पर्वतारोहण तक जीवित थीं और भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म भूषण देकर सम्मानित किया था। 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई और तेंजिंग नोर्गे को उसमें निदेशक बनाया गया। उनका निकनेम टाइगर ऑफ स्नोज रखा गया था।
Yes, like you said, Tenzing Norgay passed away on this day. He was born Namgyal Wangdi, also known as Sherpa Tenzing, a Nepalese Indian Sherpa mountaineer. He was one of the first two people known to certainly reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29th May 1953, and Time named Norgay one of the 100 most influential people of the 20th century. His death was due to cerebral hemorrhage in Darjeeling, West Bengal, and his remains were cremated in the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, his favorite haunt. And moving on, Ravi, Alan King passed away on this day in 2004. He was an American comedian, actor, and satirist, known for his biting wit and often angry, humorous rants. He was also an actor in several films and television shows. Alan King wrote several books, produced films, and appeared in plays. And in his later years, he helped many philanthropic causes. And William Martin Joel, or Billy Joel, was born on this day in 1949. He's an American singer, songwriter, and pianist, commonly nicknamed the Piano Man after his signature 1973 song. Joel has had a successful music career as a solo artist since the 1970s. From 1971 to 1993, he released 12 studio albums that spanned the genres of pop and rock music, and in 2001 released a one-off studio album of classical music compositions. Joel is one of the world's best-selling music artists and the fourth best-selling solo artist in the United States, with over 160 million records sold worldwide. Let's listen in to his hit track, Piano Man.
और अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वो तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुट मणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। वे अकेले ऐसे वीर थे अभिषेक जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता किसी भी प्रकार जो है स्वीकार नहीं की। वे हिंदू कुल गौरव को सुरक्षित रखने में सदा तल्लीन रहे। यही नहीं, महाराणा प्रताप ने एक प्रतिष्ठित कुल के मान सम्मान और उसकी उपाधि को प्राप्त किया था, परंतु उनके पास न तो राजधानी थी और न ही अन्य वित्तीय साधन। बार बार की पराजयों ने उनके स्वबंधुओं और जाति के लोगों को बहुत सी निरुत्साहित कर दिया था, फिर भी उनके पास अपना जातीय स्वाभिमान था। और अब बात कर लेते हैं भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक और फिल्म अभिनेता तलत महमूद के बारे में। इन्होंने गजल गायक के रूप में बहुत ही ख्याति प्राप्त की थी। शुरुआत में उन्होंने तपन कुमार के नाम से गाने गाए थे। आपका जन्म तो हुआ था वैसे 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में, लेकिन आपने इस दुनिया को अलविदा कहा 9 मई 1998 को। बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव के तलत महमूद के लिए संगीत एक जुनून था, जबकि उनकी अदाकारी ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार के रूप में पहचान दिलाई।
Yes, and although he tried his luck as a film actor, he did not succeed much in acting. Talat Mahmood received the Padma Bhushan Award in 1992 for his artistic contributions to cinematic and ghazal music. He was particularly famous for singing soft and somber ghazals in his quivering and silky voice. He liked romantic and tragic moods the most and helped significantly shape the style and method of modern ghazal singing in India during the 1950s and 1960s. Let's listen in to some of his songs.
तेरी नजर का सुरूर।
तो अब समय भी हो चला है श्रोताओं से अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए रवि कपूर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे ये कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं।
नमस्कार।
नमस्कार।